पहला कुरिन्थियों 13:4-5। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आत्मिक प्रेम श्रृंखला के ऊपर यह 13वां सत्र है। पहला कुरिन्थियों 13:4 में लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। पिछले सत्र तक मैंने आपको बताया था कि प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। आज इस संदेश को सुनते वक्त आप अपने आप को जांचिए कि क्या आपके अंदर प्रेम है, प्रेम धीरजवंत है। क्या आप धीरजवंत रहते हैं? धीरजवंत के बारे में मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि अपनी दुर्भावनाओं का दमन करना वो धीरजवंत नहीं है। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? बेशक आपको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको ताकत मिलती है, ताकि आप एक ऐसे स्तर में जा सकें जहां पर आपके पास दमन करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको उस स्तर में प्रवेश करना है। मैंने आपको कहा था कि डाह रखना, अपनी बढ़ाई करना और फूलना वो प्रेम नहीं है। आज परमेश्वर के अनुग्रह को मैं पहला कुरिन्थियों 13:5 के संदेश से बांटना चाहता हूं, जहां पर लिखा है प्रेम अनिरीति नहीं चलता। डिक्शनरी की परिभाषा के अनुसार अनिरीति का अर्थ है किसी के ओहदे और उसके मान के लिए अशोभनीय होना। सीनियर और जूनियर के बीच में आचरण का एक ढंग होता है, लेकिन अगर उस आचरण के ढंग को अनदेखा करें तो यह अशोभनीय हो जाता है। इसके अलावा भी दूसरे ढंग होते हैं कि कौन सबसे पहले पुरुष और महिला के बीच में हाथ मिलाएगा, बॉस और उसके कर्मचारी के बीच में कौन सबसे पहले नमस्कार करेगा, और जब आप किसी को नमस्कार करते हैं उस वक्त आपको कहां देखना होता है, और इस तरह से। जब आप किसी को नमस्कार करते हैं आपको उसकी आंखों में देखना होता है। और जब आप अपने बुजुर्ग को नमस्कार करते हैं तो कम से कम आपको थोड़ा सा झुकना चाहिए। और जब आपका आचरण इस दर्जे का नहीं होता है जो आपके ओहदे और मान के हिसाब से अनुचित है, तो यह अनिरीति होती है। हमारे लिए हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग असभ्य व्यवहार करने के बावजूद भी नहीं जानते कि उन्होंने अनिरीति का व्यवहार किया है, और ऐसा वे ज्यादातर उनके साथ करते हैं जिनके वे करीब होते हैं। वो इसीलिए जब कुछ लोगों के साथ उनको अच्छा लगता है तो उस वक्त उनकी प्रवृत्ति असभ्य हो जाती है, या सही आचरण वो नहीं दिखाते। वो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं अपनी अनिरीति की बातों और व्यवहार के द्वारा, कभी कभार उनका नुकसान भी करते हैं। उनमें भी जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन जब हम उनके कामों को देखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं तो ऐसे बहुत सारे हैं जो परमेश्वर से प्रेम करने से बहुत दूर है। लेकिन अगर हमारे पास सच्चा प्रेम है तो हम कभी अनिरीति नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके पास बहुत बहुमूल्य और सुंदर जेवर है, तो क्या आप उस जेवर को लापरवाही से रखेंगे? क्या आप लापरवाही से रखेंगे? आप बहुत ही सतर्क और सावधान रहेंगे उसे संभालने के लिए कि कहीं वह खो या टूट ना जाए या फिर उसको कोई हानि ना पहुंचे, और आप उस गहने को बहुत अच्छे पेपर में रैप करेंगे और बहुत ही अच्छे गहने के बॉक्स में आप उसे रखेंगे। उसी प्रकार से यदि आप सचमुच किसी से प्रेम करते हैं तो फिर आप कितनी श्रेष्ठता के साथ उसके साथ बर्ताव करेंगे। और असभ्य होना उस हृदय से प्रकट होता है जिसमें कोई प्रेम नहीं होता। आज जब मैं आपको अनिरीति के कुछ ठोस उदाहरण दूंगा तो आप ध्यान से सुने और करीब से अपने आप को जांचें। आपके जीवन से जुड़ा हुआ अगर आपको कुछ मिलता है तो मुझे आशा है कि आनंद भरे हृदय से आप बदल देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि बहुत से लोग आनंद और खुशी का एहसास कर सकें जब वो आपसे मिलें, जैसे मानो वो प्रभु से मिल रहे हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, अनिरीति से चलने की दो स्थितियां होती हैं। एक है परमेश्वर के सामने असभ्य होना, दूसरा है मनुष्यों के लिए असभ्य होना। सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख असभ्य होने के बारे में हम बात करेंगे। परमेश्वर अदृश्य है, वो हमारी आंखों से नहीं दिखता। तो फिर हमें क्या करना होगा इस बात को जांचने के लिए कि कहीं हम परमेश्वर के सामने असभ्य तो नहीं हुए। परमेश्वर से जुड़ी हुई चीजों के लिए हमारा रवैया किस प्रकार का रहता है, सबसे पहले हमें अपने उस व्यवहार को जांचना है। परमेश्वर की चीजें उन सब बातों को दर्शाती हैं जिसमें आराधना सभाएं पाई जाती हैं, प्रार्थनाएं, स्तुतियां, चर्च भवन और उसके अंदर सभी पवित्र वस्तुएं। उदाहरण के लिए सभाओं के दौरान सो जाना, वो एक मुख्य बात है जो परमेश्वर के सामने असभ्य है। आप में से वे जो सभाओं के दौरान सो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए यह बहुत असभ्य है। उनकी प्रार्थनाएं, जो सो जाते हैं उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन के सामने नहीं पहुंचती। परमेश्वर वैसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। आराधना सभाएं परमेश्वर के सामने अर्पण की जाती है, इसलिए सभाओं के दौरान सो जाना ये बिल्कुल ऐसे है जैसे परमेश्वर के सामने ही आप सो रहे हैं। यदि आप देश के राष्ट्रपति के सामने या किसी कंपनी के सीईओ के सामने झपकी मारें तो यह बड़ी असभ्य बात है। मान लीजिए आपके राष्ट्रपति के साथ कोई मुलाकात है और सरकार के दूसरे मंत्रियों के साथ, और आप राष्ट्रपति के सामने झपकी मार रहे हैं, आपके अपने बॉस के साथ एक मीटिंग है, सारे के सारे अधिकारी वाइस प्रेसिडेंट वहां पर है, आप कैसे उस मीटिंग में झपकी मार सकते हैं? बॉस के सामने कौन सो जाएगा? आप कभी भी ऐसा असभ्य कार्य नहीं करेंगे। इससे भी बढ़कर आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अवश्य ही आपको आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। परमेश्वर के सामने आप कैसे झपकी मार सकते हैं? या मान लीजिए आप अपने गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं और आप उसके सामने झपकी मारते रहें तो उसे कितना बुरा लगेगा? उसे लगेगा कि आप उसे अनदेखा कर रहे हैं और आप उसे प्रेम नहीं करते, और वो कहेगी अब हमारा कोई नाता नहीं। वो आप पर संदेह करेगी कि क्या सचमुच आप उससे प्रेम करते हैं। और इसके अलावा भी सभाओं के दौरान एक दूसरे से बातचीत करना और अनुचित विचार अपने अंदर आना, वह भी असभ्य होना है। खास तौर पर वे जो मुख्य भवन में नहीं हैं, या फिर जो वेदी से बहुत दूर बैठते हैं, या दूसरे भवनों में बैठते हैं जहां पर आप स्क्रीन पर टीवी पर सभाओं में शामिल होते हैं, वहां पर आपको और भी अधिक सचेत रहना है। परमेश्वर सब पर दृष्टि करते हैं, आप कहीं भी क्यों ना हो। इस तरह का व्यवहार हमें दिखाता है कि आराधक के अंदर परमेश्वर के लिए आदर नहीं है और ना ही कोई प्रयास है कि वो उचित व्यवहार कर सके। और यह ना केवल परमेश्वर के सामने असभ्य होना है, वरन प्रचारक के सामने और सभा के लीडर्स के सामने भी असभ्य होना है। उदाहरण के लिए एक विश्वासी सामने बैठे व्यक्ति से बात कर रहा है, या फिर वो झपकी मार रहा है, या काल्पनिक विचारों में खोया हुआ है। यह देखकर प्रचारक को अचंभा हो सकता है कि उसका संदेश अनुग्रह भरा नहीं है। वह पवित्र आत्मा की परिपूर्णता खो बैठ सकता है, इस वजह से वह आत्मा की परिपूर्णता से प्रचार नहीं कर सकता। और ये सारे के सारे काम अंत में दूसरे भाई बहनों को हानि पहुंचाएंगे, और यह भी असभ्य कार्य है। और सभाओं के बीच में चर्च छोड़कर चले जाना ये भी असभ्य है। हालांकि कुछ ऐसे स्वयंसेवी हैं जिन्हें चर्च की मदद के लिए चर्च से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन कुछ विशेष मामलों को छोड़ केवल सभा समाप्त होने के बाद ही बाहर निकलना केवल यही उचित है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि हम तो केवल संदेश सुनेंगे और सभा समाप्त होने से पहले छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन यह बहुत असभ्य है। मैंने एक बार आपको बताया था परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य और प्रसन्न करने वाले कार्यों के बारे में लय व्यवस्था के संदेशों के दौरान। लय व्यवस्था एक अध्याय छह पद में परमेश्वर ने मूसा को यह कहकर आज्ञा दी, फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करें। पुराने नियम में जो होम बलि है वो आज की आराधना सभाओं पर लागू होती हैं। जब वे होम बलि चढ़ाते थे उन्हें पशु को टुकड़े टुकड़े करना होता था और फिर सभी टुकड़ों को उन्हें जलाना होता था। आराधना सभा के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि हमें उचित और संपूर्ण आराधना परमेश्वर को अर्पण करनी है, शुरू से लेकर अंत तक आराधना के लिए स्थापित किए गए प्रारूप के अनुसार। और इस तरह से परमेश्वर की आराधना करने के लिए सबसे पहले हमें सभाओं में देरी से नहीं आना चाहिए। यहां तक कि दूसरे लोगों के साथ मिलने में भी देरी से आना वो उचित नहीं है, तो फिर परमेश्वर के सामने यह कितना असभ्य होगा अगर आप देरी से आते हैं। जब से मैं एक नया विश्वासी था मैं कभी भी सभा में देरी से नहीं आता था। कम से कम 10 मिनट पहले मैं परमेश्वर के भवन में आ जाता था और अपने आप को सभा के लिए तैयार करता था। कम से कम 10 से 15 मिनट पहले। मुझे याद भी नहीं है कि अगर मैं कभी देरी से आया हूं। परमेश्वर हमेशा आराधना सभा में इंतजार करता है कि वो हमारी आराधनाओं को ग्रहण करें। इसलिए हमें जब सभा शुरू होती है तभी नहीं आना चाहिए। परमेश्वर के सामने उचित यह है कि आप पहले आइए, पश्चाताप की प्रार्थना कीजिए और सभा के लिए तैयारी कीजिए, और साथ ही आराधना सभा के हर अनुक्रम का हमें अपने पूरे हृदय से पालन करना है, मूक प्रार्थना से लेकर प्रभु की प्रार्थना या आशीर्वचन तक। जब हम स्तुतियां गाते हैं या प्रार्थना करते हैं, यहां तक कि भेंटों के समय के दौरान या सूचना के समय के दौरान, हमें अपना पूरा हृदय अर्पण करना है। विशेष रूप से प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत है और स्तुतियां खाली कोई गीत नहीं होता, वरन राग के साथ प्रार्थनाएं होती है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को अपने हृदय की सुगंध को अर्पण करते हैं। इसलिए आराधना का एक हिस्सा होने के नाते जब हम स्तुतियां अर्पण करते हैं तो ना केवल आराधना में वरन आराधना सभाएं या फिर सेल की आराधना सभा होती है, हमें स्तुतियों को अपने पूरे हृदय से अर्पण करना है। उदाहरण के लिए हम दानियल प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं। यदि हम बिना किसी विशेष कारण के देरी से आए, प्रार्थना के दौरान बिना किसी कारण से इधर उधर घूमते रहें या अर्थ रहित दोहराव के साथ प्रार्थना करें और काल्पनिक विचारों के साथ झपकी मारें, तो यह सब परमेश्वर के सामने असभ्य है। और साथ ही किसी व्यक्ति को पकड़ना या उसे हिलाना जो प्रार्थना कर रहा है, यह भी असभ्य है उसकी प्रार्थनाओं को रोकना। एक व्यक्ति परमेश्वर से बातचीत कर रहा है जो सर्वशक्तिमान है, आप कैसे उस बातचीत में दखलअंदाजी कर सकते हैं? जब कोई किसी से बातचीत कर रहा होता है तो यह असभ्य है उनकी वार्ता में बाधा डालना। परमेश्वर के साथ बातचीत करने में बाधा डालना, आपको क्या लगता है कि कितना असभ्य होगा? एक बार पास्टर छा की पत्नी को गैस का जहर चढ़ गया था। ये उनकी शादी से पहले की बात है। वो बेहोश हो गई थी। पूरी रात भर उन्हें गैस चढ़ी हुई थी और वो बेहोश हो गई थी। और उस वक्त कोई उन्हें मेरे घर ले आया। मुझे लगता है कि वो सीनियर डिकनेस थी। सीनियर डिकनेस ने उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर मेरे घर लाया। वहां पर है वो वही है। उस वक्त मैं अपनी प्रार्थनाएं कर रहा था और किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया और वो कह रहे थे कि कोई व्यक्ति मर रहा है, लेकिन मैंने अपनी प्रार्थनाएं नहीं रोकी, जैसे कि मानो मैंने कुछ सुना ही ना हो। क्योंकि मैं पिता परमेश्वर से गहरी बातचीत कर रहा था इसलिए मैंने प्रार्थनाएं नहीं रोकी। जब मैंने प्रार्थना खत्म की उसके बाद मैं बाहर आया और फिर मुझे पता चला कि वो बेहोश है। वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे मानो वो मर गई हो। उसे सोफा के ऊपर लेटाया हुआ था। लेकिन एक या दो मिनट के अंदर ही जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की, वो होश में आ गई। यहां तक कि जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं और क्योंकि कोई आपको बुला रहा है, अगर आप अपनी आंखें खोलें और तुरंत ही प्रार्थना करना रोक दें तो यह भी असभ्य है। यहां तक कि दो व्यक्तियों के बीच भी अगर उनकी वार्ता में कोई बाधा डालता है और अचानक से एक व्यक्ति अगर बातचीत करना बंद करें तो इसे उचित तहजीब नहीं माना जाता। इसीलिए जब हम परमेश्वर से प्रार्थनाओं में बातचीत करते हैं, हमें अधिक सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले हमें उचित तरीके से प्रार्थनाएं रोकनी है, फिर दूसरों से बात करना है, और इसे भी बढ़कर सभाओं के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करना, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही छोड़ देना, वो भागते दौड़ते रहें, ये सब अनिरीति से चलना है। आपका सेल फोन ऑन नहीं होना चाहिए, वो ऑफ होना चाहिए। और जब आप अपने सीनियर से बातचीत करते हैं तब भी यही लागू होता है। आराधना सभाओं के दौरान खाना खाना या च्युइंगम चबाना, उसके साथ भी ऐसा ही है। हालांकि हमारे देश में तो मुझे ऐसे लोग नहीं मिलते, लेकिन जब मैं विदेशों में जाता हूं तो उस वक्त ऐसे भी लोग थे जो आराधनाओं के दौरान च्युइंगम चबाते थे। अपने सीनियर से बातचीत के दौरान भी वो च्युइंगम चबाते हैं। मैंने यहां तक कि एक मेहमान को देखा जिसे टीवी शो में बुलाया गया था, बातचीत करते हुए वो च्युइंगम चबा रहा था। कोरियन लोगों को यह समझ नहीं आता है। मान लीजिए आप पिता परमेश्वर के सामने च्युइंगम चबा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये उचित है? वो प्रकटीकरण जो आराधना सभाओं के लिए आपका होना चाहिए वो भी महत्वपूर्ण है। ऐसे कपड़े पहनकर भी चर्च आना उचित नहीं है जिन कपड़ों को आप अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं या घूमने फिरने के लिए, या फिर ऐसे कपड़े जो आप अपनी कार्यशालाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको देश के राष्ट्रपति से मिलना होगा तो किस तरह के कपड़े आप पहनेंगे? क्या आप जीन्स और शर्ट पहनेंगे? अनुमानित रूप से आप सबसे बेहतर कपड़े पहनेंगे जो आपके पास है, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से। अनुमानित रूप से आप में से ज्यादातर सूट पहनेंगे। वो इसीलिए क्योंकि हमारा पहनाव दूसरे व्यक्ति के लिए हमारे आदर और सम्मान को दिखाता है। परमेश्वर के संतान जो वास्तविकता में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर कितना उत्कृष्ट है। इसलिए जब वो आराधना सभाओं में आते हैं, वे साफ सुथरे पहनाव के साथ आते हैं। हालांकि कुछ अपवाद इसमें हो सकते हैं। बुधवार की सभा के लिए, शुक्रवार की सभा के लिए बहुत से लोग सीधे ही अपनी कार्यशालाओं से चर्च आते हैं। समय पर पहुंचने के लिए वो अपनी कार्यशालाओं के कपड़ों में आ सकते हैं। इस तरह के मामलों में परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि वो असभ्य है, बजाय इसके परमेश्वर आनंदित होगा। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर उनके उस हृदय की सुगंध को ग्रहण करते हैं कि उन्होंने समय पर आराधना सभा में आने की कोशिश की, यहां तक कि वो अपने काम में व्यस्त थे। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अंदरूनी हृदय को देखता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप दूसरे लोगों का न्याय सिर्फ उनके पहनाव को देखकर ना करें। आराधना सभाओं के लिए एक और बात मैं आपको बताता हूं, यह भी परमेश्वर के सामने अनिरीति करना है अगर हम शराब पीकर या धूम्रपान करके आराधना सभाओं में आते हैं। यहां तक कि अविश्वासी भी यह सोचता है कि जब वो चर्च में आए तो उचित उनके लिए यह है कि वो धूम्रपान ना करें या शराब ना पिए। जब मैंने चंगाई प्राप्त की उसके बाद मैं शराब नहीं पीता था, कम से कम रविवार को। सुबह और शाम को मैं शराब पीता था, लेकिन रविवार को मैंने शराब पीना छोड़ दिया। शाम की सभा समाप्त होने के बाद जब मैं घर लौटता था तब मैं शराब पीता था। उस वक्त मैं केवल एक नया विश्वासी था और मैं इस बात को नहीं जानता था कि एक विश्वासी जो मसीही है उसे शराब नहीं पीनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। लेकिन कम से कम मैंने रविवार को तो शराब पीना और धूम्रपान करना छोड़ दिया। शाम की सभाएं समाप्त होने के बाद मैं तब धूम्रपान करता था, तब शराब पीता था। तो फिर परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? यदि आप एक लंबे समय से चर्च आ रहे हैं, निश्चित रूप से आपको इन तमाम प्रकार की चीजों को विश्वास से दूर करना चाहिए। यदि आप एक नए विश्वासी हैं, तो परमेश्वर के सामने यह उचित है कि आप अपना बेहतर करें कि इन पुरानी आदतों को आप छोड़ दें। प्यारे भाई और बहनों, आराधना और प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर अपने संतान के साथ प्रेम की संगति करना चाहता है, और साथ ही आराधना और प्रार्थना वो हमारा कर्तव्य है और आभार है जिसे हमें परमेश्वर को देना है उसकी संतान होने के नाते। यदि हम अपनी आराधना और प्रार्थनाओं को आत्मा और सच्चाई से अर्पण करें, तो परमेश्वर हमें वापस आशीषें और प्रतिफल देता है। वो हमारी प्रार्थनाओं के और भी तेजी से उत्तर देता है। वो इसीलिए, क्योंकि वह हृदय की सुगंध को आनंद से ग्रहण करता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और मेरी प्रार्थनाओं के लिए मेरे पास आता है, तो मैं उससे पूछता हूं। कभी कभार मैं पूछता हूं, या फिर मैं उस परिवार के किसी व्यक्ति से पूछता हूं कि आपने प्रभु के दिन को पवित्र नहीं माना, आपने माना? अगर वो कहता है कि हां मैंने माना, तो बस इतना ही, बातचीत खत्म हो जाते हैं। यहां तक कि पवित्र आत्मा कह रहा है, लेकिन तो भी वो इनकार करता है और वो कहता है कि उसने प्रभु के दिन को पवित्र माना। यदि उसे पता होता कि प्रभु के दिन को पवित्र मानना क्या है, तो फिर वो ये नहीं कहता कि हां वो पवित्र मानता है। वो नहीं कह पाता कि उसने प्रभु के दिन को पवित्र माना है। परमेश्वर कहता है कि आप आराधना उसकी आत्मा और सच्चाई के साथ करें। आपको बिना काल्पनिक विचारों से उसकी आराधना करनी है। परमेश्वर के वचन के लिए आपको पूरा ध्यान देना है। लेकिन आप सभाओं के दौरान सोचते हैं कि आपको सभा के बाद गोल्फ खेलने जाना है, या फिर सभा के दौरान आप घर जाने के बाद टीवी पर अपना फेवरेट शो देखना चाहते हैं, तो यह वो आराधना नहीं है जिसे परमेश्वर ग्रहण कर सके। और इसके बावजूद वो कहता है कि वो प्रभु के दिन को पवित्र मानता है, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाता कि मैं कुछ बात करूं। और उसके बाद वो मुझे पत्र लिखता है कि सीनियर पास्टर, मुझे लगता है कि मैंने आपको झूठ बोला, मैं रविवार की केवल एक ही सभा में आता हूं, कृपया मुझे माफ कीजिए। वो इस तरह के पत्र मुझे भेजता है। यदि हम लगातार अनिरीति के कार्य एक साल, दो साल या तीन साल तक परमेश्वर के सामने एकत्र करते रहें, तो परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप की दीवार खड़ी कर देंगे। पति पत्नी के बीच में भी और बच्चों और माता पिता के बीच में भी यदि बिना प्रेम का संबंध लगातार बना रहेगा, तो बहुत सी समस्याएं उठ खड़ी होगी। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर के विरुद्ध अगर कोई दीवार है, तो हम बीमारियों से और दुर्घटनाओं से सुरक्षित नहीं रह सकते। अलग अलग समस्याओं का हम सामना कर सकते हैं। हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, चाहे लंबे समय तक प्रार्थना क्यों ना करें। लेकिन अगर हम आराधना सभाओं में उचित व्यवहार करते हैं, प्रार्थनाओं में उचित व्यवहार करते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम पा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सब के सब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर को, जो कि आत्मा है, अपनी सारी प्रार्थना, स्तुतियां और आराधनाएं आत्मा और सच्चाई से अर्पण कर सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के भवन में अनिरीति से कार्य करना यह भी परमेश्वर के सामने असभ्य होना है। उदाहरण के लिए, हमें क्रोधित या लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और साथ ही संसारिक मनोरंजन या व्यवसाय की बात करना भवन के अंदर यह भी असभ्य है। और साथ ही लापरवाही से चर्च में परमेश्वर की पवित्र चीजों को रखना या उन्हें तोड़ देना या फिर गलत इस्तेमाल करना यह भी असभ्य है। भजन संहिता 11:4 का पहला हिस्सा कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। परमेश्वर का भवन वो चर्च है जहां परमेश्वर निवास करता है। पुराने नियम के समय में हर कोई पवित्र स्थान में नहीं जा सकता था, केवल याजक ही जाने के योग्य था। साल में केवल एक बार और केवल महायाजक ही सबसे पवित्र स्थान में पवित्र स्थान के अंदर जा सकता था। पवित्र से पवित्र स्थान में जा सकता था, क्योंकि यह पवित्र और अलग किया हुआ स्थान था। इसलिए अगर कोई पापी मनुष्य वहां जाता था वो मर जाता था। लेकिन आज हमारे प्रभु के अनुग्रह से कोई भी भवन में जा सकता है और उसकी आराधना कर सकता है। उसका कारण यह है, जैसे कि इब्रानियों 10 अध्याय 19 पद में लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। दूसरे शब्दों में, वो जो प्रभु के लहू पर विश्वास करते हैं उन्हें हियाव है पवित्र स्थान में जाने का। वो इसीलिए क्योंकि यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से मुक्त कर दिया। यहां तक कि यीशु जिसने इस तरह का प्रेम हमें दिया उसने भी पवित्र भवन में तिरस्कार ग्रहण नहीं किया। जब उसने देखा कि मंदिर में लोग कुछ खरीद और बेच रहे हैं, तो उसने कड़े तौर पर उन्हें डांटा और उन्हें बाहर निकाला, यह कहते हुए जैसे कि मत्ती 21 अध्याय 13 पद कहता है, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। उसने मेजों को उलट दिया और जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकाला। वो उन्हें देखकर इतना दुखित हुआ। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पवित्र भवन को अपवित्र बना दिया। और उसने कहा मत्ती 21 अध्याय 13 पद में कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और यह तो मंदिर के अंदर भी नहीं था, यह मंदिर का बाहरी क्षेत्र था। केवल याजक ही मंदिर के अंदर जाने के लिए अनुमति प्राप्त था उन दिनों में, और केवल महायाजक ही महापवित्र स्थान में जा सकता था, अंदरूनी स्थान में। और उस वक्त लोग परमेश्वर की आराधना अलग से आराधनालय में करते थे, वो परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि मंदिर का बाहरी हिस्सा वह भी मंदिर से ही संबंध रखता है। मान लीजिए आपके पास एक घर है, तो ना केवल उस घर का भवन वरन उस घर का बाहरी क्षेत्र या बाड़ा वो भी आपका घर है कि नहीं? केवल आपका भवन ही आपका घर है? क्या बाड़ा आपका घर नहीं है? नहीं, वो सब कुछ आपका है। चाहे आपने अपना घर किसी को रेंट पे भी दिया हो तो भी वो आप ही का घर है। इसलिए प्रभु ने कहा कि उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया है। डाकुओं की खो, ये मंदिर के भवन में नहीं था वरन मंदिर के बाड़े में था, और वहां पर वो उन चीजों को बेचते थे जिन्हें परमेश्वर को अर्पण किया जाता था। लेकिन यीशु ने उस तरह के कार्यों की भी अनुमति नहीं दी। यहां पर हम एहसास कर सकते हैं कि भवन का मतलब सिर्फ वो भवन नहीं होता जहां हम आराधना करते हैं, वरन हर वो क्षेत्र जो उस भवन की सीमा में आता है, जिसमें चर्च है, बाहरी क्षेत्र है या दूसरी चीजें हैं। परमेश्वर का मंदिर जो यरूशलेम में है उसमें 10,00,000 लोग आ सकते हैं। वहां का बाहर का बाड़ा इतना बड़ा था कि वहां 10,00,000 लोग आ सकते हैं, और वहां पर वो कबूतर, बकरी के बच्चे और दूसरी चीजों को बेचते थे कि परमेश्वर के लिए भेंटों के रूप में इस्तेमाल किए जा सकें। लेकिन प्रभु उनसे दुखित हुआ और उसने कहा कि उन्होंने मंदिर को डाकों की खो बना दिया है। यदि आप इस बात को समझते हैं तो आपको परमेश्वर के भवन में चीजों को खरीदना और बेचना नहीं चाहिए। आपको भवन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसलिए आप चर्च में जहां कहीं भी क्यों ना हो, मुझे आशा है कि आप यहां तक कि छोटी सी बात और कार्य के लिए भी सावधान रहेंगे, ताकि आप उसे पवित्र और सिद्ध बना सकें। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप चर्च के पवित्र वस्तुओं को भी उसी तहजीब से संभालें। भजन संहिता 84:10 पर कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिनों से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से मैं अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यह दाऊद है। इसलिए वह ऐसा अंगीकार कर पाया। उसने कहा कि कहीं और के 1,000 दिन से उत्तम मेरे लिए परमेश्वर की देवड़ी में खड़ा रहना अधिक भाता है। कहीं और के 1,000 दिन से बेहतर परमेश्वर की देवड़ी में रहना है। राजा दाऊद के इस अंगीकार में परमेश्वर के प्रति हम उसका खरा प्रेम और सच्चा हृदय देख सकते हैं कि वह देवड़ी में रहना चाहता है, चाहे उसे एक सामान्य द्वारपाल ही क्यों ना बना रहना पड़े। इसी प्रकार से जितना अधिक हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा, उतनी ही अधिक लालसा परमेश्वर के भवन के लिए होगी। इसलिए हम चर्च के अंदर अन्य रीति नहीं करेंगे। इसलिए मुझे आशा है कि आप शुद्धता से जो कुछ परमेश्वर का है अपने पूरे हृदय से संभालेंगे, जिस प्रकार से आप मानव परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर के लिए आपका प्रिय संबंध गहरा और गहरा होता जाए। प्यारे भाई और बहनों, आइए अब हम उन मामलों को देखेंगे जहां पर हम दूसरे लोगों के साथ असभ्य होते हैं। पहला यूहन्ना 4:20 में लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखें तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। मैंने दो भाइयों को देखा, बहुत लंबे समय पहले की बात है, मैंने दो भाइयों को देखा था। वो दोनों मसीह थे, वे विश्वासी थे, लेकिन वे बात विवाद करते थे, एक दूसरे से झगड़ा करते थे हर वक्त जब कभी भी वे मिलते थे। वे हमेशा एक दूसरे पर दोष लगाते रहते थे। एक भाई कहता था कि यह तेरी गलती है, फिर छोटा कहता था नहीं, यह तेरी गलती है। वो झगड़ते थे, इस तरह से बात विवाद हर वक्त करते रहते थे। वो झुकते नहीं थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप एक ही मां से जन्मे हो, आप कैसे इस तरह से वाद विवाद कर सकते हो? आपको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भाई हो। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सीनियर पास्टर मुझे माफ कीजिए, ये मेरी गलती है, मैं इसे बदल दूंगा, चाहे मुझे प्रार्थना और उपवास क्यों ना करना पड़े। वो लगातार एक दूसरे पर ही दोष लगा रहे थे, एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। बड़ा भाई कहता था कि उसका छोटा भाई उसके साथ बहुत असभ्य व्यवहार करता है, और फिर छोटा भाई कहता था कि उसका बड़ा भाई हर वक्त उसे कुछ ना कुछ काम करने को कहता है। वो एक दूसरे पर लगातार दोष लगा रहे थे इस तरह से। आप अपने आप को मुड़कर देखिए कि पहले कहीं आप तो ऐसे नहीं थे। कृपया आप अपने आप को जांचें कि क्या आप सचमुच पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि सचमुच पिता परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, तो फिर कुछ और नहीं वरन आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन आप अपने भाई से प्रेम नहीं करते जिसको आपने देखा है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। जो कुछ आप कहते हैं वो सब झूठ है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसे बैर नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, तो फिर आप अपने भाई से कैसे प्रेम नहीं रख सकते? जैसे कि लिखा गया है, केवल तब जब हम अन्य रीति नहीं करेंगे अपने भाई बहनों की ओर, तभी परमेश्वर हमारे अंगीकार पर विश्वास कर सकता है जब हम कहते हैं कि हम उसे प्रेम करते हैं। जिन लोगों को हम देख सकते हैं, अगर हम उनके साथ असभ्य हो, तो फिर परमेश्वर की हर चीज में हम कैसे उचित तहजीब दिखा सकते हैं जिसे हम देख नहीं सकते? यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमें अपने भाई बहनों की ओर भी असभ्य नहीं होना चाहिए। तो फिर भाई बहनों की ओर किस तरह की बातें असभ्य होती हैं? आमतौर पर यदि हम केवल अपने ही लाभ के पीछे चलें दूसरों का ध्यान दिए बगैर, तो फिर बहुत से असभ्यता के कार्य सामने आते हैं। हम दूसरों के हृदय में असुविधा पैदा कर सकते हैं, या फिर आर्थिक हानि कर सकते हैं, या तनाव पैदा कर सकते हैं, या उन्हें बाध्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम फोन पर बात करते हैं तो फोन पर बात करने की तहजीब होती है। यदि हम देर रात कॉल करें या लंबे समय तक फोन पर उस व्यक्ति से बात करें जो बहुत व्यस्त है, तो फिर हम उसका कितना नुकसान करते हैं। किसी नियुक्त समय में देरी से पहुंचना या अचानक से किसी के घर चले जाना, वो इस तरह की अशिष्टता के उदाहरण है। जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, पड़ोसियों से मिलते हैं और संगति करते हैं, तो उसमें भी हमें तहजीब का ध्यान देना होता है। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे यह लगता होगा कि हम तो बहुत करीबी हैं, क्या यह औपचारिकता नहीं है इन तमाम चीजों के बारे में हमारे बीच में सोचना? आप वास्तविकता में एक अच्छे संबंध में हो सकते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की सारी बातें समझते हो, लेकिन तो भी यह बहुत मुश्किल होता है कि दूसरों के हृदय को आप 100% समझ सकें। इसलिए हमें जांचना चाहिए कि क्या यह हमारी अपनी ही राय तो नहीं जब हम दूसरों के दृष्टिकोण से सोचते हैं। विशेष तौर पर हमें सावधान रहना चाहिए कि हम दूसरे व्यक्ति के लिए असभ्यता का व्यवहार ना करें, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हमेशा उसके साथ होते हैं या हम उसके करीबी हैं। चाहे आप अपने पति, पत्नी, बच्चों या अपने दोस्तों के साथ कितने ही करीबी क्यों ना हो, आपको उनके साथ अभद्र नहीं होना है, क्योंकि आप उनके बहुत करीब हैं, क्योंकि आप उसकी पति है, उसकी पत्नी है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये चलेगा और आप असभ्य हो जाते हैं, अनिरीति दिखाते हैं। आपको वो कभी नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि पति अपनी पत्नी की सेवा करें और पत्नी अपने पति की सेवा करें, तो फिर वो हमेशा खुश रहेंगे। परिवार शांति में बना रहेगा। यदि हम केवल आधिकारिक अवसरों पर ही आदर दिखाएं, तो यह केवल एक दिखावा है, क्योंकि हम कुछ लोगों के बहुत करीब होते हैं, इसलिए हम उनकी परवाह नहीं करते और हम लापरवाही से बात कर सकते हैं या फिर लापरवाही का काम कर सकते हैं और इस तरह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या उनका अपमान करते हैं। परिवार के लोगों के लिए हम असभ्य हो जाते हैं या करीबी दोस्तों के लिए, और अंत में संबंध कमजोर हो जाता है और बहुत ही बुरा भी हो सकता है, और फिर वो दोस्ती लंबी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से कुछ बुजुर्ग लोग जवान लोगों को या उन लोगों को जिनका पद नीचे होता है, अनिरीति का व्यवहार दिखाते हैं, वो अनादर की बातें बोलते हैं या फिर उनका आदेश भरा व्यवहार होता है, इस तरह से वो दूसरों को असुविधा में डालते हैं। मुझे सुनने को मिला कि एक ग्रुप लीडर अपने ग्रुप के सदस्य को आदेश देते हैं कि मेरे लिए कॉफी लाओ, ये करो, वो करो। और फिर ग्रुप के सदस्य वो विरोध भी नहीं करते, वो सिर्फ अपने लीडर की सेवा करते हैं। यदि लीडर अपने ग्रुप के सदस्यों की बेहतर सेवा करता, तो फिर वो पहले से आत्मा में आ जाते। यदि आप किसी के साथ असभ्य होते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसके करीब है, तो आप केवल शरीर में ही रहेंगे, आप आत्मा में नहीं आ सकते। आत्मा में आने के लिए अवश्य ही आपको इस तरह की चीजों को ढूंढना है और इनसे मुक्ति प्राप्त करनी है, तो फिर आप आत्मा में आ सकते हैं। अवश्य ही आपको अपने हृदय को भलाई और आत्मा में जोतना चाहिए, केवल तभी आप आत्मा में आ सकते हैं। विशेष तौर पर पास्टर्स, लीडर्स, उन्हें अनादर की भाषा नहीं बोलनी चाहिए और ना ही उनका व्यवहार आदेश भरा होना चाहिए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका पद लीडर का है। और साथ ही लव व्यवस्था 19:32 पद कहता है, पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदरमान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूं। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, जब आपको रास्ते में या बस के अंदर कोई बुजुर्ग मिलते हैं, क्या आप अपनी सीट उन्हें देते हैं? इस तरह से सवारी किए हुए मुझे बहुत लंबा समय हो गया है, इसलिए मुझे पता नहीं है कि आजकल विद्यार्थी किस तरह से कर रहे हैं। जब मैं विदेशों में जाता हूं, बस में यदि मुझे कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है, तो मैं सीट पर नहीं बैठता, मैं अपनी सीट उन्हें दे देता हूं। मैं खड़ा हो जाता हूं अपनी सीट से जब कोई बस में चढ़ता है। चाहे कोई मेरी उम्र का ही क्यों ना हो, मैं सीट पर नहीं बैठता वरन उसे दे देता हूं। लेकिन आज ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल है जो पूरे हृदय से अपने माता पिता, अध्यापक या बुजुर्ग लोगों की सेवा करते हो, जिन्हें हमें स्पष्ट रूप से सेवा करनी चाहिए। कुछ ऐसे कह सकते हैं कि अब स्थिति बदल गई है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम मनुष्यों के साथ भी अपना संपूर्ण कर्तव्य निभाएं, उसे ना बदलें, और साथ ही साथ परमेश्वर के संतान को इस संसार के क्रम और कानूनों को नहीं तोड़ना चाहिए, अन्य रीति नहीं दिखानी चाहिए। चाहे चीजें कैसे ही क्यों ना बदलें, लेकिन सत्य वही बना रहता है। तहजीब अभी भी वहीं पर है जो आपको माननी है। उदाहरण के लिए, यदि हम सार्वजनिक स्थानों में हल्ला गुल्ला मचाते हैं, सड़कों पर थूकते हैं या यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो यह बहुत से लोगों के लिए अन्य रीति का व्यवहार दिखाना होता है। इस संसार में हम परमेश्वर के संतान के रूप में जी रहे हैं, जैसे कि मत्ती 5:16-17 पद में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यदि आप भले काम करते हैं तो फिर उन भले कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हैं। लोग कहेंगे कि हाँ, ये चर्च जाता है इसलिए वो भला व्यक्ति है, इसे परमेश्वर को महिमा मिलती है कि नहीं? मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन योग्य हो कि बहुत से लोगों के हृदय को छू सके। प्यारे भाई और बहनों, ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर समय दूसरे लोगों के साथ बिताते हैं, मिलने में, बातचीत करने में, उनके साथ खाना खाने में और उनके साथ काम करने में, और उसी सीमा तक बहुत प्रकार के सांस्कृतिक शिष्टाचार भी होते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में, जैसे कि नमस्कार करने में, बातचीत करने में और खाना खाने में। परंतु प्रत्येक की शिक्षा अलग अलग होती है और अलग अलग देशों में, अलग अलग पंथों में अलग अलग सांस्कृतिक शिष्टाचार होते हैं। तो फिर हमारी तहजीब का मापदंड क्या होना चाहिए? वो है प्रेम की व्यवस्था जो आपके हृदय में है। प्रेम की व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था को दर्शाती है जो अपने आप में प्रेम है। दूसरे शब्दों में, जिस सीमा तक आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, आपके पास प्रभु की तहजीब होगी और आप अनिरीति नहीं करेंगे। प्रेम की व्यवस्था का दूसरा अर्थ है परवाह करना। असभ्यता तब उत्पन्न होती है जब आप दूसरों की परवाह नहीं करते, जिसका मतलब है दूसरों के लिए प्रेम की कमी का होना। इसीलिए अगर हम दूसरों को सचमुच प्रेम करें तो हम हमेशा उनकी परवाह करेंगे, इस कारण हम अनिरीति का व्यवहार नहीं दिखाएंगे। यदि आप सिद्ध प्रेम को अपने हृदय में साधें तो पूरी तरह से आप प्रेम की इस व्यवस्था का पालन करेंगे। इसीलिए मुझे आशा है कि आप तेजी से इस सिद्ध प्रेम को अपने हृदय में साध लें, ताकि आप प्रत्येक के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे मानो हम स्वर्ग के राज्य में कर रहे हैं, जैसे कि मानो हम प्रभु के साथ ही व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा करने के द्वारा स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा और सब लोगों के द्वारा आप ऊंचे दर्जे का आदर प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं।